एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम समय में काफी पीछे चलेंगे, लगभग 2500 साल पहले।
हाँ, प्राचीन यूनान।
प्राचीन यूनान के एक ऐसे विचारक के पास जिनकी सोच आज भी हमें चौंका देती है, डेमोक्रेटस।
बिल्कुल, डेमोक्रेटस एक ऐसा नाम जिन्हें अक्सर हम हंसने वाला दार्शनिक कहकर याद करते हैं।
हाँ, वो भी है।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन, जो मुझे लगता है, वो थी परमाणुवाद का क्रांतिकारी विचार।
सही कहा।
ये सोचना ही अद्भुत है कि उस जमाने में कोई कह रहा था कि पूरी दुनिया, हर चीज छोटे छोटे मतलब न टूटने वाले कणों से बनी है, परमाणु।
और ये विचार उन्होंने तब दिया जब दुनिया जादू, मिथकों और देवताओं की कहानियों में डूबी हुई थी।
बिल्कुल,
यही बात आज की हमारी चर्चा को खास बनाती है। हम डेमोक्रेटस के जीवन, उनके समय के माहौल, उनके मुख्य विचार और हाँ, उनकी स्थायी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करेंगे।
हमारे पास उनके दर्शन और जीवन पर केंद्रित कुछ स्रोत हैं जिनकी मदद से हम इस यात्रा पर निकलेंगे।
तो चलिए डेमोक्रेटस की दुनिया में गहरे उतरते हैं।
हाँ, देखते हैं कैसे उनके विचारों ने न सिर्फ भविष्य के विज्ञान की नींव रखी, बल्कि जीवन जीने के तरीके पर भी एक, क्या कहते हैं, अनूठी दृष्टि दी।
शुरुआत उनके समय से करते हैं।
डेमोक्रेटस का जीवन काल मोटे तौर पर 460 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये यूनान का, खासकर एथेंस का, स्वर्ण युग कहा जाता है। पर क्या डेमोक्रेटस एथेंस के उस चमकते केंद्र का हिस्सा थे?
दिलचस्प बात यह है कि नहीं, मतलब पूरी तरह से नहीं। वो एथेंस के पास थ्रेस के एब्डेरा शहर से थे।
अच्छा, एब्डेरा।
हाँ, और ये वो दौर था जब एथेंस में सुकरात गलियों में घूमकर लोगों से नैतिकता पर सवाल कर रहे थे। प्लेटो अपना अकादमी स्थापित करने वाले थे और सोफिस्ट भी थे।
हाँ बिल्कुल, और सोफिस्ट तर्क वितर्क की कला सिखा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में वो विनाशकारी पेलोपोनेसियन युद्ध भी चल रहा था। लेकिन डेमोक्रेटस वो एथेंस के इस मुख्य दार्शनिक केंद्र से कुछ अलग थलग ही रहे।
तो क्या वे जानबूझकर इस माहौल से दूर रहे या उनकी सोच ही अलग दिशा में जा रही थी?
शायद दोनों बातें। देखिए, वे पूर्व सुकराती दार्शनिकों की परंपरा से आते थे।
प्री सोक्रेटिक।
हाँ, प्री सोक्रेटिक। ये वो विचारक थे जिनकी मुख्य दिलचस्पी ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने में थी। वे मिथुकों की जगह तर्क और अवलोकन से, मतलब लोगों से, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे।
वो पूछ रहे थे, असल में ये दुनिया बनी किस चीज से है, ये काम कैसे करती है।
बिल्कुल, यही सवाल।
और यहीं से परमाणु का विचार आया।
हाँ, लेकिन इसका श्रेय पूरी तरह डेमोक्रेटस को नहीं जाता। माना जाता है कि परमाणुवाद का पहला विचार उनके गुरु ल्यूसिपस ने दिया था।
ल्यूसिपस, ओके।
हाँ, लेकिन डेमोक्रेटस ने इस बीज को पकड़ा, उसे सींचा और एक विशाल, मतलब एक विस्तृत दार्शनिक प्रणाली में बदल दिया। और ये प्रणाली उस समय के कई स्थापित विचारों के ठीक उलट थी।
जैसे कि प्लेटो के विचार।
बिल्कुल, प्लेटो मानते थे कि असली वास्तविकता हमारे आसपास की ये भौतिक दुनिया नहीं, बल्कि विचारों या रूपों की एक शाश्वत अमूर्त दुनिया है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटस का कहना था कि केवल दो ही चीजें वास्तविक हैं, ठोस अविभाज्य कण यानी परमाणु, एटमोस, जिसका मतलब ही है जिसे काटा न जा सके,
एटम।
हाँ, और उनके घूमने के लिए शून्य, केनॉन यानी खाली जगह, बस ये खालिस भौतिकवाद था, मेटेरियलिज्म।
और उस समय के एक और विचारक थे ना, पार्मेनाइड्स।
हाँ, पार्मेनाइड्स। वो कहते थे कि शून्य जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि न होना कैसे हो सकता है।
लॉजिक।
हाँ, तर्क तो था, पर डेमोक्रेटस के लिए तो शून्य परमाणुओं जितना ही जरूरी था। उनका सवाल था कि अगर खाली जगह नहीं होगी तो परमाणु हिलेंगे डुलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे।
बात तो सही है। ये तो वाकई स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती थी। ऐसे क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति का अपना जीवन कैसा था? क्या वे भी सुकरात की तरह साधारण पृष्ठभूमि से थे?
इसके ठीक उलट, डेमोक्रेटस एब्डेरा के एक बहुत अमीर परिवार में जन्मे थे।
अच्छा।
और कहा जाता है कि अपने पिता से मिली दौलत का बड़ा हिस्सा उन्होंने ज्ञान की तलाश में यात्रा करने पर खर्च कर दिया।
यात्राएं कहाँ कहाँ की?
किंवदंतियां तो यहाँ तक कहती हैं कि वे मिस्र गए, फारस गए, शायद बेबीलोन, और कुछ कहते हैं भारत भी पहुंचे।
अरे वाह।
वे हर जगह के विद्वानों, गणितज्ञों, पुजारियों से सीखना चाहते थे। ये दिखाता है कि उनकी दृष्टि कितनी वैश्विक थी, मतलब एथेंस केंद्रित नहीं।
हाँ, वो ज्ञान को किसी एक जगह या संस्कृति तक सीमित नहीं मानते थे।
बिल्कुल,
शायद इसी व्यापक अनुभव ने उन्हें इतने सारे विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी।
निश्चित रूप से, वे एक चलते फिरते विश्वकोश की तरह थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 70 ग्रंथ लिखे।
70?
हाँ, भौतिकी, नैतिकता, गणित, संगीत, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, यहाँ तक कि युद्ध कला पर भी।
70 ग्रंथ और आज तो उनकी कोई किताब पूरी नहीं मिलती है ना, ये कितना बड़ा नुकसान है।
ये वाकई ज्ञान की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमें उनके विचार बाद के दार्शनिकों और लेखकों, खासकर अरस्तु और डायोजीनीज लेटियस के उद्धरणों, सारांशों और आलोचनाओं से ही पता चलते हैं।
कहते हैं प्लेटो तो उन्हें इतना नापसंद करते थे कि उनका नाम तक नहीं लेते थे।
हाँ, ऐसा कहा जाता है, शायद उनके भौतिकवाद के कारण। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्लेटो उनकी किताबें जला देना चाहते थे।
बाप रे, विचारों का ऐसा टकराव। तो जो जानकारी बची है उससे उनकी मुख्य रचनाओं और उनमें छिपे विचारों के बारे में क्या अंदाजा लगता है?
कुछ खास किताबों के नाम और विषय पता चलते हैं, जैसे द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम।
सुना है।
परमाणु लगातार गतिशील रहते हैं, टकराते हैं, जुड़ते हैं और इस प्रक्रिया से अनगिनत दुनियाएं बनती और नष्ट होती रहती हैं बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के।
यानी एक पूरी तरह से यांत्रिक ब्रह्मांड।
और मनुष्य और उसकी आत्मा के बारे में क्या कहा?
उनकी एक और कृति थी
मनुष्य की प्रकृति पर,
ऑन द नेचर ऑफ मैन। इसमें संभवतः उन्होंने यही तर्क दिया होगा कि मनुष्य भी परमाणुओं की एक जटिल व्यवस्था है।
इंसान भी।
हाँ।
यहाँ तक कि हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, सब कुछ सूक्ष्म गतिशील परमाणुओं की क्रिया का परिणाम है। कोई अमर अभौतिक आत्मा नहीं।
ये उस समय के लिए बहुत ही रेडिकल विचार था।
बिल्कुल रेडिकल।
और नैतिकता पर भी उन्होंने काफी जोर दिया, जिसे वे यूथेमिया कहते थे।
हाँ, उनके नैतिक लेखन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जीवन का लक्ष्य यूथेमिया को बताया, यानी एक तरह की आंतरिक शांति, मानसिक स्थिरता, या कह लीजिए सच्ची खुशी।
खुशी।
हाँ, और ये खुशी क्षणिक इंद्रिय सुखों से नहीं, बल्कि संयम, समझदारी और जीवन की सीमाओं को स्वीकार करके तर्कपूर्ण जीवन जीने से मिलती है।
तो चलिए उनके इस सबसे प्रसिद्ध विचार परमाणु सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। परमाणु और शून्य, बस यही दो असलियतें।
हाँ, यही उनका मूल मंत्र था। सोचिए कितनी सरलता और कितनी गहराई। ये परमाणु कैसे हैं? वे संख्या में अनंत हैं, प्रकार में भी अनंत।
अनंत।
हाँ, अनंत हैं। वे आकार, माप और शायद बनावट में भी एक दूसरे से अलग हैं, जैसे अलग अलग तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना। बस वैसे ही, इन्हीं के अलग अलग तरीकों से जुड़ने और व्यवस्थित होने से दुनिया की सारी विविधता पैदा होती है। पत्थर, पानी, हवा, आग, पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ।
और इन सब के पीछे कोई उद्देश्य, कोई डिजाइनर नहीं, सब कुछ बस परमाणुओं के टकराने और जुड़ने से हो रहा है।
उनके अनुसार, हाँ, सब कुछ कारण और प्रभाव, कॉजालिटी के कठोर नियमों से बंधा है। हर घटना पिछली घटनाओं का अनिवार्य परिणाम है।
अच्छा।
उन्होंने कहा था, कुछ भी यूं ही नहीं होता, बल्कि हर चीज किसी कारण और आवश्यकता से होती है। ये एक तरह का यांत्रिक नियतवाद था।
नियतवाद।
हाँ, इसने ब्रह्मांड की व्याख्या से देवताओं और पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरी तरह बाहर कर दिया।
ये तो धर्म और पारंपरिक सोच पर सीधा प्रहार था। इस सोच का ज्ञान प्राप्त करने के तरीके पर क्या असर पड़ा? आपने कहा था वे इंद्रियों पर भरोसा नहीं करते थे।
हाँ, उन्होंने ज्ञान के सिद्धांत एपिस्टेमोलॉजी पर भी महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये हमें दुनिया की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाती।
अच्छा।
हाँ, ये हमें जो बताती हैं वो राय या सतही ज्ञान है।
ऐसा क्यों? हमें तो लगता है हम दुनिया को इंद्रियों से ही जानते हैं।
डेमोक्रेटस का तर्क था कि गुण जैसे मीठा, कड़वा, गर्म, ठंडा या रंग, ये वस्तुओं के अपने असली गुण नहीं है।
नहीं है।
नहीं, ये गुण तब पैदा होते हैं जब वस्तुओं से आने वाले परमाणुओं का समूह हमारी इंद्रियों के परमाणुओं से संपर्क करता है। असली वैध ज्ञान, वो कहते थे, बुद्धि से आता है, जो इन सतही अनुभवों के पीछे छिपे परमाणुओं और शून्य की वास्तविकता को समझ सकती है।
अच्छा, तो उन्होंने इंद्रिय अनुभव को नकली ज्ञान कहा।
हाँ, एक तरह से उन्होंने इंद्रिय अनुभव को बैस्टर्ड नॉलेज। हाँ। और बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को लेजिटिमेट नॉलेज कहा था।
ये बड़ा दिलचस्प है। एक भौतिकवादी होकर भी वे अनुभवजन्य ज्ञान की सीमाएं बता रहे थे। और नैतिकता में यूथीमिया कैसे प्राप्त होगी? क्या यह सिर्फ दार्शनिकों के लिए था?
नहीं, उनका मानना था कि यह हर किसी के लिए प्राप्य है। रास्ता है संयम, मॉडरेशन।
संयम?
हाँ, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अत्यधिक सुख या दुख से बचना और तर्क के अनुसार शांत जीवन जीना। उन्होंने बौद्धिक सुखों जैसे ज्ञान प्राप्त करना और चिंतन करना को शारीरिक सुखों से ऊंचा माना। ये बात के कुछ सुखवादियों से अलग सोच थी, जो हर तरह के सुख को अच्छा मानते थे। उनके लिए सच्ची खुशी मन की शांति में थी।
तो प्लेटो और अरस्तु जैसे समकालीनों से उनकी टक्कर जबरदस्त रही होगी।
बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क था कह सकते हैं। प्लेटो के लिए असली दुनिया विचारों की अमूर्त दुनिया थी, भौतिक दुनिया तो बस एक छाया थी।
हाँ।
अरस्तु मानते थे कि हर चीज का एक अंतर्निहित उद्देश्य, एक टीलोस होता है। प्रकृति एक उद्देश्य पूर्ण व्यवस्था है। डेमोक्रेटस ने इन दोनों बातों को नकार दिया। उनका ब्रह्मांड बिना किसी उद्देश्य के संयोग और आवश्यकता के नियमों से चलने वाली एक विशाल मशीन की तरह था।
संयोग और आवश्यकता?
हाँ, परमाणुओं का संयोजन नियमों के तहत होता है, लेकिन कौन से संयोजन बनेंगे और कैसे बनेंगे, इसमें संयोग यानी चांस की भी भूमिका है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्लेटो उन्हें पसंद नहीं करते थे।
तो क्या प्लेटो और अरस्तु के दबदबे के कारण डेमोक्रेटस के विचार इतिहास में खो गए?
काफी हद तक और काफी समय तक। देखिए, प्लेटो और अरस्तु का दर्शन पश्चिमी विचार और बाद में ईसाई धर्मशास्त्र के साथ ज्यादा आसानी से जुड़ गया।
हाँ, ये बात तो है।
डेमोक्रेटस का भौतिकवाद, जिसमें आत्मा भी नश्वर थी और देवताओं की कोई भूमिका नहीं थी, वो धार्मिक मान्यताओं के लिए एक चुनौती था। इसलिए लगभग 1000 साल तक उनके परमाणुवादी विचार यूरोप में हाशिए पर चले गए।
लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुए, क्या किसी ने उनकी मशाल जलाए रखी?
हाँ, ये भी कहानी का एक दिलचस्प मोड़ है। एक और यूनानी दार्शनिक हुए,
एपिक्यूरस। हाँ।
उन्होंने डेमोक्रेटस के परमाणु सिद्धांत को अपनाया और उसे अपने दर्शन का आधार बनाया। थोड़ा बदलाव किया उसमें, खासकर स्वतंत्र इच्छा की गुंजाइश बनाने के लिए।
अच्छा।
फिर सदियों बाद रोमन कवि ल्यूक्रेशियस ने अपनी अद्भुत कविता डी रेरम नेचुरा, वस्तुओं की प्रकृति पर, में एपिक्यूरस के माध्यम से डेमोक्रेटस के विचारों को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया।
हाँ, ये किताब तो बहुत प्रभावशाली रही है।
बिल्कुल, ये कविता मध्ययुग में फिर से खोजी गई और इसने पुनर्जागरण और बाद में वैज्ञानिक क्रांति पर गहरा प्रभाव डाला।
और वैज्ञानिक क्रांति के दौरान तो जैसे डेमोक्रेटस का पुनर्जन्म ही हो गया।
एकदम सही। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब गैलीलियो, रॉबर्ट बॉयल, पियरे गैसेंडी और आइजैक न्यूटन जैसे विचारक ब्रह्मांड को गणितीय नियमों और यांत्रिक सिद्धांतों से समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें डेमोक्रेटस के विचारों में एक शक्तिशाली आधार मिला। पदार्थ, गति, कारण कार्य संबंध, इन सब के लिए डेमोक्रेटस ने एक ऐसा ढांचा दिया था जिसमें किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं थी।
इसीलिए उन्हें अक्सर आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
हाँ, कई लोग उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं इसी वजह से।
क्या गजब की वापसी, 2500 साल पुराने विचार इतने प्रासंगिक हो गए।
हाँ, और आज भी, हालांकि आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मतलब क्वांटम फिजिक्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह, डेमोक्रेटस के सरल मॉडल से बहुत आगे निकल चुका है।
जाहिर है।
फिर भी ये मूल विचार कि वास्तविकता अंततः कणों से बनी है, ये उन्हीं की देन है। उनके विचारों की गूंज आज भी भौतिकी, रसायन विज्ञान और यहां तक कि मन के दर्शन में सुनाई देती है। ये सवाल कि क्या हमारी चेतना भी सिर्फ भौतिक परमाणुओं की जटिल व्यवस्था का परिणाम है?
गहरा सवाल है। उनके कुछ कथन भी उनकी सोच की गहरी छाप छोड़ते हैं।
जैसे वो सबसे प्रसिद्ध वाला?
हाँ, परमाणुओं और शून्य स्थान के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, बाकी सब राय है।
Nothing exists except atoms and empty space. Everything else is opinion.
ये उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है।
हाँ, एक तरफ कठोर वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, दूसरी तरफ हमारा व्यक्तिपरक बदलता हुआ अनुभव।
और इंद्रियों के बारे में वो कथन भी बहुत सटीक है, परंपरा से मीठा, परंपरा से कड़वा, लेकिन वास्तव में परमाणु और शून्य।
ये बताता है कि दुनिया को हम जैसा अनुभव करते हैं, रंग, स्वाद, वो उसकी असली मौलिक प्रकृति नहीं है, वो हमारे और परमाणुओं के संपर्क का नतीजा है। सीधी सी बात है, पर कितनी गहरी।
नैतिकता पर उनके कथन भी उतने ही विचार उत्तेजक हैं।
हाँ, जैसे खुशी संपत्ति में नहीं, सोने में नहीं रहती, आत्मा ही खुशी का निवास स्थान है।
एक भौतिकवादी होते हुए भी आंतरिक शांति को महत्व देना।
हाँ, यही उनकी खासियत थी।
और ये वाला भी, बहादुर वह है जो न केवल अपने शत्रुओं पर बल्कि अपने सुखों पर भी विजय प्राप्त करता है।
ये उनके संयम और आत्मनियंत्रण पर दिए गए जोर को दर्शाता है, सच्ची खुशी के लिए।
उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी मशहूर हैं, जैसे उन्हें हंसने वाला दार्शनिक क्यों कहा जाता था।
हाँ, ये उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू है। उनकी तुलना अक्सर एक और दार्शनिक हेराक्लिटस से की जाती थी, जिन्हें रोने वाला दार्शनिक कहते थे।
हाँ, जो हमेशा दुखी रहते थे।
बिल्कुल, क्योंकि वो दुनिया के दुखों पर शोक मनाते थे। डेमोक्रेटस के विपरीत इंसानी मूर्खताओं, महत्वाकांक्षाओं और व्यर्थ की भागदौड़ पर हंसते थे। हाँ, लेकिन ये हंसी मजाक उड़ाने वाली नहीं, बल्कि एक तरह की तटस्थ ज्ञानी मुस्कान थी जो दुनिया की बेतुकी बातों को देखकर आती थी। एक समझदारी भरी शांति।
और वो कहानी कि उन्होंने अपनी पूरी विरासत यात्रा और सीखने पर खर्च कर दी और फिर अदालत में अपना बचाव अपनी किताब पढ़कर किया।
हाँ, ये किस्सा उनकी ज्ञान की प्यास और शायद उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। कहते हैं कि जब उन पर विरासत बर्बाद करने का मुकदमा चला तो उन्होंने अपनी महान कृति द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम से कुछ अंश पढ़े। अदालत इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें बरी कर दिया।
अरे वाह।
हालांकि इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं, पर यह उनकी छवि से मेल खाता है। गणित में भी उनका योगदान माना जाता है, खासकर शंकु और पिरामिड के आयतन की गणना में।
और क्या ये सच है कि उन्होंने खुद को अंधा कर लिया था ताकि चिंतन में बाधा न पड़े?
ये भी एक प्रसिद्ध लेकिन संभवतः काल्पनिक किस्सा है। कुछ प्राचीन लेखक ऐसा कहते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसे उनके गहन आंतरिक चिंतन और बाहरी दुनिया से वैराग्य को दर्शाने वाली एक क्या कहते हैं अतिशयोक्ति मानते हैं।
हो सकता है। जाहिर है इतने क्रांतिकारी विचारों की तीखी आलोचना भी हुई होगी। अरस्तु तो बड़े आलोचक थे।
बिल्कुल, अरस्तु ने परमाणु सिद्धांत को कई कारणों से खारिज किया। उन्हें शून्य का विचार तर्कसंगत नहीं लगा। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि अगर सब कुछ पहले से मौजूद परमाणुओं की टक्कर से हो रहा है तो गति शुरू कहां से हुई।
हाँ, उनका अनमूव्ड मूवर वाला कॉन्सेप्ट
ज्यादा था कि सदियों तक परमाणुवाद को अकादमिक दुनिया में स्वीकृति नहीं मिली।
और नियतत्ववाद का मुद्दा, अगर सब कुछ परमाणुओं के नियमों से तय है तो हमारी आजादी कहाँ है, फ्री विल?
ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक चुनौती थी जो डेमोक्रेटस के विचारों से पैदा हुई। अगर हर घटना पिछली घटनाओं का अनिवार्य नतीजा है तो क्या हमारी पसंद, हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी सब भ्रम है? इसी समस्या से निपटने के लिए बाद में एपिकुरस ने परमाणुओं की गति में एक यादृच्छिक झुकाव या स्वर्व की अवधारणा जोड़ी ताकि थोड़ी स्वतंत्रता और संयोग की गुंजाइश बन सके।
अच्छा, ये एपिकुरस ने किया?
हाँ।
और उनकी रचनाओं का खो जाना भी एक पहेली है? क्या ये महज हादसा था या जानबूझकर उन्हें मिटाया गया?
ये बहस का विषय है। हो सकता है कि समय के साथ पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, या ये भी संभव है कि बाद के विचारकों, खासकर धार्मिक सत्ता से जुड़े लोगों ने उनके नास्तिक लगने वाले भौतिकवाद को खतरनाक मानकर उनकी रचनाओं को संरक्षित करने में रुचि नहीं दिखाई, या शायद उन्हें दबा दिया।
सच जो भी हो, ये ज्ञान का अपूरणीय नुकसान है।
बिल्कुल।
तो अंत में हम डेमोक्रेटस की विरासत को कैसे देखें? आज वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?
डेमोक्रेटस सिर्फ एक प्राचीन दार्शनिक नहीं है, वे एक दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। एक ऐसे समय में जब दुनिया अलौकिक शक्तियों से भरी मानी जाती थी, उन्होंने हिम्मत दिखाई एक ऐसा ब्रह्मांड रचने की जो पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों पर आधारित हो,
जिसे समझा जा सके, जिसकी व्याख्या की जा सके।
हाँ, उनका परमाणु सिद्धांत कि यह विशाल ब्रह्मांड बस न दिखने वाले कणों और खाली जगह का खेल है, ये मानवीय तर्क की एक जबरदस्त उड़ान थी।
भले ही उनके विचारों को सदियों तक नजरअंदाज किया गया,
लेकिन वे मरे नहीं। वे सही समय का इंतजार करते रहे और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में पुनर्जीवित हुए। वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे क्रांतिकारी विचार मुख्यधारा से बाहर आते हैं और उन्हें स्वीकार किए जाने में लंबा समय लग सकता है।
वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया को समझने के लिए हमें शायद देवताओं या भाग्य से परे खुद प्रकृति के नियमों को ही देखना होगा।
और उनकी विरासत सिर्फ विज्ञान में नहीं है। उनका यूथीमिया का विचार कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, संयम और ज्ञान में है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
डेमोक्रेटस हमें चुनौती देते हैं कि हम वास्तविकता, ज्ञान और एक सार्थक जीवन के बारे में गहराई से सोचें, लगातार सवाल पूछें।
तो ये थी डेमोक्रेटस की कहानी, हंसने वाले दार्शनिक की, जिसने हमें परमाणुओं की दुनिया दिखाई। उम्मीद है आपको इस ज्ञान गोष्ठी में सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए आयकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।